अभी टेक्स्ट नंबर 64।
क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो।
तात्पर्य,
अर्जुन को गूढ़ ज्ञान मीन्स ब्रह्म ज्ञान तथा गूढ़तर ज्ञान दैट इज परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गूढ़तम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मनमना भव, सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोड़ देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण को शुद्ध भक्त, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए।
यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से वो ज्ञान बताना, सर्व खुए तुम नाउ कृष्ण, नाउ अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा, अब बताऊंगा कि दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, खुए तुम क्यों सर्व खुए तुम बोया सुनो, मैं परम वचन, मेरा परम वचन सुनो। क्यों क्यों परम वचन बताना है? इष्टोसी में जुड़े मती, मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन, इसलिए तो ततो बक्ष्यामि तेतम, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये चीज ऑलरेडी भगवान ने 9वें अध्याय बता चुके हैं। तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इसके विषय में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञान को लेकर के जो 6 अध्यायों का समरी था, वो भगवान ने यहाँ समाप्त कर दिया, और भक्ति योग के जो भक्ति योग जो है, ये जो श्लोक अभी आने वाला जो है, श्लोक आने वाले जो श्लोक, या फिर आई कैन से दैट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बता रहे कि पहले जो 6 अध्याय जो थे, उसको आप मान लो कि वो कर्म रूपी गोल्डन, पहला और अंतिम 6 अध्याय वो कर्म रूपी गोल्डन बक्सा है, या फिर ऐसा मान लो कि पहले 6 अध्याय सोने का गोल्डन रूपी बक्सा है, और अंत के जो 6 अध्याय है वो उसका कवरिंग, उसका ढक्कन है, और उसके बीच में एक बहुत बड़ा खजाना है, वो है कृष्ण की भक्ति। और वो ऐसा खजाना है कि जो तीनों लोक में इसका ऐसा पावरफुल कुछ भी नहीं है, और इतना पावरफुल है वो कृष्ण को भी वश में कर सकता है। और ये महान जो खजाना है, उसकी जो चाबी है, चाबी, वो चाबी टेक्स्ट नंबर 65 और 66 है, ये उसकी चाबी है। और जब भगवान ने देखा कि अर्जुन गीता को इतना अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, तो भगवान के हृदय मक्खन की तरह पिघल गया अपनी कृपा से, और अर्जुन को अपना इतना स्वीट वचन में प्यार उमड़ आया अर्जुन के प्रति। और भगवान ने यह बता दिया कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अब वो बात बताना चाहता हूँ कि जो सबसे श्रेष्ठ है। सो विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, टेक्स्ट नंबर 64 से 65 से।
हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ जी, पूछिए।
हाँ, वो पहला 6 अध्याय यानी 1 से 6 वो गोल्ड का बॉक्स है,
ऐसा मान सकते हो।
अच्छा, लास्ट 6 ढक्कन है।
हाँ, उसका कवरिंग।
और बीच का जो श्लोक, सब श्लोक ना, मतलब
हाँ, बाकी के जितना भी भक्ति वो उसका खजाना है, भक्ति खजाने की चाबी टेक्स्ट नंबर 65 और
66,
ये दो श्लोक उसकी चाबी है।
हाँ ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न किसी को? ओके सो वी स्टॉप हियर, वी मीट यू अगेन रमाकांत प्रभु, आप कोऑर्डिनेट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट हम कब मिल रहे
हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने पिछले श्लोक में ये बताया था कि इष्टोस्ति मे जड़मति, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरा परम वचन फिर से बताता हूँ। इष्टोस्ति मे जड़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए मैं तुम्हारे हित में इस गुह्य तर्क विज्ञान, ये गुह्यतम विज्ञान है या जो सबसे उत्तम अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हें फिर से बताता हूँ। भक्त जो होता है वो साधारण होता ही नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बताता हूँ, इसका अर्थ है कि जो गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले भक्तों या जो भी उनके उपासक है, उन लोगों की तुलना में भक्त के पास ज्यादा गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर वाले से भी गुह्यतम वाला ज्यादा अच्छा है। तो भक्त जो होता है वो साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका हृदय जो है वो भक्ति के माध्यम से शुद्ध हो गया है। इस सृष्टि के विषय में जितना भी कुछ ज्ञान है, यद्यपि इसके साथ साथ भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब जो है वो शास्त्र में विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन ये सब कुछ साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते कि भगवान का धाम कैसा होता है, भगवान के गुण कैसे होते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा होता है, भगवान का रूप कैसा होता है, भगवान की लीला कैसी होती है, ये सब साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। लेकिन भक्त जो होता है वो उसके हृदय में मान लो जैसे एक टीवी इंस्टॉल कर दिया, जैसे हमने आपको एक बार पहले बताया था कि भक्त के हृदय में एक टेलीविजन सेट इंस्टॉल हो गया है, और एक्चुअली टेलीविजन सेट सबके हृदय में होता ही है, लेकिन सबका टेलीविजन सेट जो है वो बिगड़ गया है मोस्टली यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ उसमें देख नहीं सकते। लेकिन गुरु होते हैं या हमारे आचार्य है, परंपरा है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स है जो हमारे टेलीविजन सेट को रिपेयर कर देते हैं, और हमारे टेलीविजन सेट को जैसे आप प्रिपेयर करते हैं गुरु और गुरु साधु शास्त्र, तो परिणाम यह आता है कि स्वयं आपके सामने सब कुछ प्रकाशित होता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई इच्छा की हो और वो पूरी ना हुई हो। ब्रह्मा जी ऐसा नारद जी को बता रहे हैं, निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हैं, और साथ साथ में उनका ऐसा भी माना जाता है कि नहीं, ना तो उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, ऐसा बना ऐसा कुछ हुआ, और ना ही कभी उन्होंने ऐसी कोई इच्छा प्रस्तुत की है कि जो भगवान की सेवा से अलग हो। तो ये भक्ति योग की सुंदरता है कि भक्त जो होता है वो भगवान की तरह ही अच्युत बन जाता है, अर्थात जिस तरह से भगवान हमेशा सफल होते हैं, इस तरह से भक्त जो होता है वो निरंतर भगवान की सेवा के कारण वो भी अच्युत बन जाता है, उसका भी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डायरेक्ट संपर्क होता है कृष्ण की शक्ति के कारण, तो उसका पूरा जो चार्ज है वो कृष्ण के हाथ में होता है। इसलिए कभी भी भक्त को साधारण मानना ही नहीं चाहिए, और वास्तव में ऐसे जो भक्त होते हैं, जो महात्मा इस प्रकार के जो शुद्ध महाभागवत भक्त होते हैं, वो करोड़ों में एक होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सब भी, प्रभु आपने बताया बड़ा अच्छा किया, अब हमें भी पता पड़े ना कि हम कितने पवित्र है, आज रात को सोएंगे तो कल हमें पता पड़ जाएगा कि हम कितने पवित्र है। नहीं, हो सकता है आप में से कोई होगा भी पवित्र, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोटि सोपी महामुनि,
करोड़ों करोड़ों में से कोई एक ऐसा भक्त होता है जो 100% कृष्ण के सर्व में जुड़ा हुआ, 100% कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। सो भगवान भगवद गीता में ऐसा भी कहते हैं, एटलीस्ट इसी श्लोक में, कि इष्टोसी में, इष्टोसी मीन्स बिकॉज आई लव यू, इष्टोसी में दृढ़मिति बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर माई कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, मुझे ये विश्वास है कि तुम मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबको नहीं बताया। भगवान सबको एक रूप से नहीं बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, आई मीन ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति समझा नहीं होगा तो क्या समझ पाएगा। किसी आदमी को जाके ऐसा बोलो छोड़ दो सब कुछ चले जाओ कृष्ण की शरण में, कोई अनजान व्यक्ति को जाके ऐसा बोलो तो वो बोलेगा कि अपने आप समझता क्या हो तुम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्यों शरणागत होऊंगा। एक्चुअली ये लोग जो भक्त जो शरणागत नहीं है, जो सरेंडर नहीं है, जो जो गुह्यतम ज्ञान के क्वालिफाइड नहीं है, वो लोग इस बात को समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने ये जो उत्तम वस्तु है वो संपूर्ण भगवद्गीता समाप्त होने के पश्चात बताई, पहले नहीं बताई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है सो अब हे अर्जुन, अब तुम्हें इतना सब अप्स एंड डाउन्स हो रहे, वो बहुत सारी चीजें मैंने बताई, ये योग वो योग ज्ञान कर्म बहुत सारी चीज मैंने बताई, अब तुम इसके लिए अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो। मैं तुम्हें एकदम यू नो सीक्रेट फॉर्म में बता देता हूँ कि भगवद्गीता का क्या संदेश है। इसका अर्थ कभी ये नहीं समझना कि पूरी भगवद्गीता का कोई अर्थ नहीं है, अब ये दो श्लोक हमें याद रह गया बस हो गया काम। भगवद्गीता का अर्थ अवश्य है, किंतु इसका जो मुख्य संदेश है वो यहाँ पर फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। सो टेक्स्ट नंबर 65।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया कि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु नारायण राम वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करें जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है।
सो यहाँ पर भगवान
चार चीज बताते हैं अर्जुन को, वही चीज हमने पहले एक बार आपसे चर्चा किया था, उसको फिर से भगवान दोहरा रहे हैं। सबसे गुह्यतम ज्ञान, पहला मनमाना निरंतर मेरा चिंतन करो, दूसरा है मेरे भक्त बनो, तीसरा है मेरी पूजा करो, और चौथा है मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। ये पहले पार्ट में ये चार आदेश दिए हैं, और दूसरे पार्ट में इसका परिणाम बताया गया है कि अगर ये चारों चीज अगर तुम करोगे तो इसका क्या फल प्राप्त होगा। तो ये चार चीज जो है उसमें भी जो पहली वस्तु है मन मना, वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी चीज को हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि भगवान के चिंतन अपने मन को लगाना, ये सबसे उत्तम ज्ञान, सबसे उत्तम संदेश सारे शास्त्र का यह सार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, इन दोनों ने इस प्रकार से कमेंट्री दी है इस विषय में कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओगे, मुझे प्राप्त करोगे, इसलिए तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। तुम अपने मन को नहीं लगा सकते तो अपने कान को लगाओ, या कम से कम किसी और इंद्रिय को लगाओ, या फिर मुझे धूप फूल ऐसा कुछ अर्पण करो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि मैं केवल इतने मात्र से, अगर आप दो तीन अगरबत्ती या धूप जो है उसको मुझे अर्पण करोगे, एक कोई भी एक जैस्मिन या कोई भी ऐसा कोई भी फूल मुझे अर्पण करोगे, एनी फ्लावर, तो मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि मैं उसके सामने मैं तुम्हें अपने आप को दे दूंगा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। ऐसा भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, आई विल बिकम योर्स, यू कैन गेट मी इन एक्सचेंज जस्ट बाय ऑफरिंग अ लिटिल भक्ति, थोड़ा सा प्रेम अर्पण करने से मैं तुम्हारे वश हो जाऊंगा। आई मीन दिस इज अ बिग थिंग, बट हम लोग समझ नहीं सकते कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम सोचते कि फूल तो कोई भी अर्पण कर सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से अर्पण करोगे फूल तो मैं तुम मुझे खरीद सकते हो इस तरह से, और मैं सत्य कहता हूं, इसमें शंका नहीं है। तो अमरकोश नाम का डिक्शनरी है, उसमें सत्य शब्द का अर्थ होता है व्रत, प्रतिज्ञा। ऐसे किसी वस्तु को स्थिर कर ठोस साबित बताने के लिए सत्य, मैं सत्य कहता हूँ, आई स्वेयर। सो अर्जुन शायद ऐसा कह सकते हैं, एक मिनट कृष्णा, ये मथुरा में जो लोग जन्म लेते हैं ना, वो हर बात में ऐसे ही बोलते हैं, मैं सत्य कहता हूँ कसम से, आई स्वेयर, हर एक चीज में वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो कृष्णा ने कहा तो मैं ये कहता हूं अर्जुन कि ये मेरा दृढ़ सत्य है कि तुम, ये सत्य है साथ साथ में ये भी मैं कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। व्हाट इज दैट, मन माना भगवान भक्तो मध्य जी माम नमस्कारो मामे वैश्यसि युक्त्वैवम, सॉरी मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते सत्यम ते, अर्थात ये सत्य है, ये वचन है। लेकिन अर्जुन ऐसा बोल दे ना सत्य वाले तो बहुत, आप तो ये ब्रज वाले हमें पता है वो सत्य बोलते हैं हर चीज में, इसलिए फिर भगवान ने आगे ऐड कर दिया सत्यम ते प्रति जाने, जान लो अर्जुन प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, ये सेकंड चीज बता दिया, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। बलदेव विश्वभूषण भी इस विषय में ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अगर तुमने मेरा चिंतन करने के सब गुण वगैरह जो मैंने पहले बताया था, अगर तुम इसको विकसित करोगे तो मैं तुम्हारा वही कृष्ण, तुम्हारा मित्र के रूप में रहूंगा, और मैं वही कृष्ण हूँ कि जिसका सुंदर कलर एक
लोटस ब्लू कलर का जो लोटस होता है, नील कमल जैसा मेरा शरीर का रंग है और मैं मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ हूँ, और अब तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मेरा एक दूसरा रूप भी है जिसमें हजारों हाथ है, हजारों सहस्त्र पानी सहस्त्र पार ओम सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्र 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 पार, ऐसे उनके पास नहीं जाओगे और न ही तुम किसी परमात्मा के पास जाओगे जो आपके अंगूठे की साइज के हैं, तुम परमात्मा के पास जाओगे ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम वरा देव वामन देव या चार हाथ वाले नारायण या नरसिंह देव या ऐसे किसी स्वरूप के पास जाओगे, नहीं तो कहां जाएंगे तुम, केवल मैं घन श्याम श्याम सुंदर कृष्ण दो हाथ वाला जो पीताम्बर पहना हुआ है यमुना के तट पे कदम्ब वृक्ष के नीचे जो मुरली बजा रहे उसके पास आओगे अगर तुम मेरे शरणागत होते हो तो। और मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ, आई टेल यू, तुम इसका ये समझ लो अर्जुन, ये मेरा सत्य है, वचन है। तो बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं कि अर्जुन वही कहेंगे फिर से, आई मीन जस्ट सेम पॉइंट, भाई ये तुम सत्य सत्य मत बोलो क्योंकि ये सत्य बोलने से मेरा संतोष नहीं होता है, ये सत्य है नहीं। तो फिर भगवान उसको रिप्लाई करते हैं, हाँ अर्जुन तुम्हारी ये बात तो सही है कि ये ब्रजवासी होते हैं, ब्रज वाले वो लोग हर चीज में सत्य सत्य करते हैं, ठीक है, लेकिन तुम एक बात समझ लो कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो और जो ब्रज में जो लोग होते हैं वो किसी कोई प्रिय व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करते, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अपना प्रिय होता है उसको क्यों धोखा देगा, तुम तो मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो, मैंने ऐसे थोड़ी बोल दिया था अर्जुन कौन थे प्रतिजा नहीं नमे भक्त जी, मैं ऐसा थोड़ी बोल दिया था, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, जिसके लिए मैं स्वयं यहाँ सारथी बन के आया हूँ, तुम मेरा प्रिय हो, मेरा प्रिय हो उसी में, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास रखना चाहिए। सो इस तरह से कुछ इस तरह की चीज बताई है भगवान ने अर्जुन को। और फिर प्रभुपाद जी इस विषय में आगे कहते हैं कि आप कृष्ण, आप किसी को भी, कृष्ण का तो बात छोड़ो, आप किसी के विषय में हमेशा कैसे सोच सकते हो, आप सोचिए किसी के विषय में आप हमेशा कैसे सोच सकते हो, हाउ इट कैसे पॉसिबल है ये कि आप एक ही व्यक्ति के विषय में बार बार सोचते हो, ये तभी पॉसिबल होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, तभी ये संभव है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। उस जगह आप प्रेम करोगे तब आप चाहो तभी भी वो व्यक्ति आपके मन से जाएगा नहीं, ये सिचुएशन। प्रॉपर एग्जांपल ये जस्ट लाइक व्हेन अ बॉय एंड अ गर्ल आर इन लव, अगर समझो कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में है तो वो एक दूसरे के विषय में निरंतर सोचते रहते, निरंतर वो उनके माइंड से जाते ही नहीं, वो सब काम करते हैं इधर जाते उधर जाते लेकिन मन में केवल वही सोचते रहते, कब मैं उसको फिर से मिलूंगा, कब वो आएगी, कब कहाँ कैसे बात होगा, क्या कर रही होगी, यही विचार करते रहते निरंतर। सो इसलिए इफ यू वांट टू रिमेम्बर कृष्णा, अगर जब भगवान कहते हैं कि मन मना मुझमें निरंतर मेरा चिंतन करो, तो उसके लिए आपके पास भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि आप कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करो। सो ये प्रेम को विकसित करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, प्रेमान जनक छुरित भक्ति विलोचने न, भक्ति जो संत सदैव हृदय विलोकयति, अगर आप सही में कृष्ण को, ये असंभव नहीं है कि आप कृष्ण को, अरे प्रभु जी आज तक इतने सालों से मैं तो जुड़ा हूं लेकिन आज तक मैंने कृष्ण को देखा ही नहीं, आप देख सकते हो, आज तक आप मूर्ति को देख रहे हो और अभी भी हम उस मूर्ति को भी कृष्ण मान नहीं पाए हैं, और हम असली कृष्ण मूर्ति भी असली है लेकिन जो स्वयं कृष्ण है उनको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेम विकसित करना पड़ेगा, प्रेम। अच्छा तो ये प्रेम कैसा होता है, ये किस प्रकार का होता है? तो हमने तो यहाँ प्रभुपाद का एग्जांपल बताया आपको कि एक ये लड़का लड़की के बीच में जो होता है प्रेम, हालांकि वो तो वास्तविक प्रेम तो है ही नहीं, वो तो केवल लस्ट होता है, काम होता है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हमने प्रभुपाद ने बताया ये चीज। लेकिन सही में अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम होता है तो वो प्रेम आपके कार्य के माध्यम से आप प्रस्तुत कर सकते हो। और वो प्रेम कैसे प्रस्तुत होता है, जैसे पत्नी अगर पति को प्रेम कर रही है तो वो उनके लिए भोजन बनाएगी, उनका घर साफ करेगी, उनकी सब प्रकार की सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि उसको प्रेम है अपने पति के प्रति। सो इस तरह से अगर सही में प्रेम है, मेरे हृदय में गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, वो तो मेरे कार्य ही चीख चीख कर घोषणा कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेम कितना है। कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि मैं कौन से कार्य में लगा हूँ, मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे बोलने का ढंग कैसा है, मेरे सोचने का तरीका क्या है, ये हर एक व्यक्ति ये देख सकता है। आप मेरे विषय में देख सकते हो, आप दूसरों के विषय में देख सकते हो, सबके विषय में ये देख सकते हो कि ये व्यक्ति किस तरह से कौन से कार्य में लगा हुआ है। और जो भक्त वास्तव में भगवान को प्रेम कर रहा है वो निरंतर भगवान की सेवा में लीन रहना चाहता है और वो उसी तरह से अपने आप को मोल देता है, वो प्रेम है। जैसे प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उनको 70 साल की आयु में ऐसे एक महीने का पानी में जो यात्रा करके वहां अमेरिका में रहना और वहां पर सब प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, जितनी सब प्रकार की समस्याओं का सामना करना, ये प्रेम था इसलिए हुआ। ये कृष्ण के प्रति, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति ये प्रेम था उनका। अब कोई ये भी कह सकता है कि प्रभु मैं तो कुछ भी करूं तो मैं तो प्रेम ही कर रहा हूँ ना गुरु को। नहीं, गुरु के आदेश का पालन करना ये प्रेम माना जाता है। प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य है जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनका उम्र का, उनका स्वास्थ्य का, उसका भी वो ध्यान नहीं रखते और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अपने आप को प्रवेश कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, तो ये क्या क्यों कर रहे हैं लोग, उनको कुछ चाहिए इसके ऊपर से? नहीं, वो प्रभुपाद के प्रति उनका जो प्रेम है वो छलक रहा है, वो दिख रहा है उनके कार्य से, उनके उनके स्केड्यूल से, उनके लाइफ से, उनके उनके प्रवचनों से, उनकी सेवाओं से। तो ये प्रेम जब होगा तब व्यक्ति समझ सकता है कृष्ण को। और ये प्रेम कहां से आता है, बाहर से आता है? नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रेम बाहर से नहीं आता है, कहां से आता है? शास्त्र कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति सद्य कबुनाए। ये प्रेम जो होता है वो कहीं बाहर से लाया के आपके हृदय में डाला नहीं जाता है, ये आपके हृदय में है ऑलरेडी, इट इज देयर। इसको कृत्रिम रूप से कहीं से लाया नहीं जा सकता, दिस इज ऑलरेडी देयर। लेकिन जिस तरह से जस्ट लाइक द अट्रैक्शन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग गर्ल कम्स एट अ सर्टेन स्टेज, एक प्रॉपर अवस्था पर, एक प्रॉपर उम्र में, एक प्रॉपर परिस्थिति में किसी पुरुष का या किसी स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री के पुरुष के प्रति आकर्षण जो होता है, एक प्रॉपर एज पर एक लड़के लड़की का आकर्षण, दैट मीन्स वो स्टेज तक हमें रुकना पड़ता है। वो स्टेज क्या है? वो स्टेज है जब आपका प्रेम परिपक्व होगा। अच्छा, वो स्टेज कैसे आएगा? वो स्टेज कब हमें प्राप्त होगा कि जब मैं कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाएगा? ये स्टेज आएगा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। या तो ये हम श्रवणम कीर्तनम शुरू कर देते हैं, जैसे हम श्रवणम कीर्तनम को प्रस्तावित करते हैं, उसको उसमें जुड़ते हैं, साधु की संगत करते हैं, भक्तों के द्वारा सुनते हैं। आप खुद ही चेक कर लो कि जब से लॉकडाउन हुआ तो प्रैक्टिकली आप नो डाउट आप बहुत सारी सेवा भी करते होंगे और श्रवणम भी करते होंगे, लेकिन हम लोग आपस में यहाँ पर जूम के माध्यम से या किसी भी तरह से हम लोग आपस में पहले की तुलना में अधिक मिल रहे हैं। हम आपको अधिक हमारा संपर्क हो रहा है, हम आपसे अधिक बात कर रहे हैं पिछले कुछ 15 दिनों में। तो अधिक बात करने का हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में अधिक चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता के विषय में अधिक डिस्कशन कर रहे हैं, अधिक कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि आप खुद अनुभव किए होंगे कि लास्ट के जो 15 दिन है वो आपको एक प्रकार से अच्छा नरिशमेंट प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि बार बार भगवदगीता सामने आती है, एक अच्छा नरिशमेंट प्राप्त हुआ होगा। ऑफकोर्स आप भक्त लोग ऑलरेडी रोज इस तरह से 24 घंटा कृष्ण कीर्तन में ही लगे होंगे, लॉकडाउन पहले भी आप रोज का प्रवचन सुनते होंगे, बुक्स को पढ़ते होंगे, सेवा करते होंगे, आपका दिन इसी तरह से जाता होगा। लेकिन एटलीस्ट मेरा तो कृष्ण भक्त में ये पिछले 15 दिनों में टाइम जैसा बचता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता है। व्हाट द पॉइंट हियर ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इज कि जितना श्रवणम कीर्तनम बढ़ेगा उतने अधिक आपका कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और जितना आकर्षण बढ़ेगा उतना प्रेम उजागर होगा, और जितना प्रेम उजागर होगा उस भाव से फिर आप भगवान को देख पाएंगे। सो दिस इज एज इजी एज दैट, एंड व्हेन प्रेम उजागर होगा तो आप सोच पाओगे कृष्ण को उसमें मन मना। फिर कृष्ण अभी क्या है प्रॉब्लम कि हम कृष्ण को याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ये हमारी सिचुएशन है, हम याद नहीं कर पाते। और गोपियों का और ब्रजवासियों का कैसा है, वो कृष्ण को भूलने के लिए उनको प्रयास करना पड़ता है, हमें याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उनको भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वो भूल नहीं पाते। कभी कभी आपस में बोलते भी है कि अरे भाई कोई और विषय है नहीं, निरंतर कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं। नहीं नहीं आज तो 100% आए, हम किसी और विषय में चर्चा करेंगे, कृष्ण के विषय में नहीं बोलेंगे। और फिर उसी तरह से बात शुरू करते हैं और एक मिनट के अंदर वापिस वहीं पर आ जाते, कृष्ण के ऊपर ही आ जाते। दे कैन नॉट थिंक अदर देन कृष्ण, कैन नॉट थिंक। तो ये अवस्था तक हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण के अतिरिक्त और किसी वस्तु को सोने भी नहीं, सोचे भी नहीं। और आप कहेंगे प्रभु जी लेकिन लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि हम तो इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचे नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ये केवल हमारा भ्रम है। अगर आप निरंतर कृष्ण के विषय में सोचते हैं, निरंतर कृष्ण के सेवा में रहते हैं, तो कृष्ण आपको ऐसा अमृत का आस्वाद कराएंगे कि जो अमृत आपको संसार में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। आप मटेरियल चीज की डिस्कशन करो या मटेरियल चीज के विषय में सोचो तो आप थक जाओगे, लेकिन कृष्ण के विषय में सोचने के आप कभी थकोगे नहीं। और परिणाम यह आएगा कि आपका उत्साह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उत्साह जैसा मैंने एग्जाम्पल एक बार बताया था राम की सेवा का, कि रामचंद्र की सेवा के लिए जब वानर सेना गई थी तो उन लोगों ने सेतु बनाने का निर्माण कार्य किया, तो उन्होंने इतना 800 माइल का जो सेतु है वो उन्होंने 5 ही दिन में बना दिया था। तो पहले दिन कुछ बनाया, दूसरे दिन सीधा डेढ़ा बनाया, उससे ज्यादा और उत्साह बढ़ गया, सेवा करते करते और उत्साह बढ़ गया, और फिर उन्होंने 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया। सो द पॉइंट इज जितना अधिक सेवा करोगे कृष्ण की, जितना अधिक अपने आप को लगाओगे कृष्ण की सेवा में, उतना अधिक उत्साह आपका बढ़ता जाएगा कृष्ण की सेवा में, और परिणाम यह आएगा कि आप इस कृष्ण भक्ति को आनंद, जैसे भगवान बताते ना केवल आनंद कंदर, इसमें केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। सो द मेन पॉइंट हियर इज मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्ण एंड मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बनो, ये बहुत आवश्यक होता है, कि भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पर, ट्राई टू यू नो बिकम माय डिवोटी, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये चार चीज अगर तुम करोगे देन आई स्वेयर अर्जुन तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। सो दिस वॉज द यू नो इम्पोर्टेंट श्लोक टूडे, एंड अनदर इम्पोर्टेंट श्लोक इज कमिंग, बट मे बी वी मे बी एबल टू डिस्कस इट next time, but is there any question besides that? किसी को कोई प्रश्न है?
हाँ प्रभु जी।
Yes.
आपने initially बताया था कि कृष्ण ऐसा बताते हैं कि कोई फूल ऑफर करता है तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ। तो भगवान मतलब वश में हो जाते हैं भक्त के, तो उस भक्त का क्या फिर व्यवहार होता है, मतलब हम कैसे किसी भक्त को देख के जान सकते हैं कि भगवान उसके वश में।
प्रभुपाद को देख लो, प्रभुपाद के जीवन से आप समझ सकते हो कि कृष्ण उनके वश में है। अर्थात प्रभुपाद के कई ऐसी लीलाएं भी है प्रभुपाद जी की कि इस साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता, वो कृष्ण के कारण ही हो पा रहा था। बहुत सारी ऐसी लीलाएं, कभी कभी तो ऐसा होता था कि प्रभुपाद जी ने एक मूर्ति देखा था, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वो मूर्ति किसी के घर पे गए थे और मूर्ति बहुत सुंदर थी, कृष्ण की, राधा कृष्ण की मूर्ति थी, मार्बल की नहीं नहीं आई थी। भगवान को प्रभुपाद को बहुत पसंद आई, प्रभुपाद ने कहा अपने शिष्य को कि ये मूर्ति तुम उठा लो अपने घर पे ले जाए, अपने मंदिर में इसका इंस्टॉलेशन करो। वो जो सामने वाला आदमी था वो तो अभी वो कुछ सोचे कुछ समझे उससे पहले प्रभुपाद ने उनको बोल दिया कि हम तुम्हारे ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति हम ले जा रहे हैं, हम हमारे मंदिर में इनकी स्थापना करेंगे और इनकी सेवा करेंगे। तो वो उसको लगा कि प्रभुपाद मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो तो सही में वो तो शिष्य खड़े हुए और मूर्ति उठाई और चलने लगे। तो वो बोलता रह गया, स्वामी स्वामी लेकिन एक बात तो सुनी, ये मूर्ति मैंने इंडिया से मंगवाई है, ये बहुत कीमती मूर्ति है, बहुत मेहनत से आई। प्रभुपाद ने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये मूर्ति दान में दे दी। प्रभुपाद वहां से चले गए अपने शिष्यों के साथ। वो जो आदमी था व्यापारी वो देखता रह गया कि यह क्या हो गया। आई मीन जस्ट वन एग्जाम्पल, लेकिन कृष्णा प्रैक्टिकली प्रभुपाद के साथ निरंतर रहते थे और वो सारे कार्य कृष्ण खुद प्रभुपाद के माध्यम से खुद ही करते थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कृष्णा इज क्लोज विद प्रभुपाद।
राइट। और प्रभु जी ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि मन को भगवान रूप की ओर नहीं मोड़ना चाहिए, और भगवान के नाना रूप है था विष्णु नारायण राम वरा आदि। मतलब हम तो सारे मतलब विष्णु कृष्ण के जो भी अवतार हैं, मतलब उन राम नरसिंह वरा सबको पूछते हैं, तो ये
भगवान ने एक्चुअली ये प्रोविजन दिया है, वैरायटी दी है कि जिसको जिस स्वरूप के प्रति आकर्षण होता है वो उस भक्ति में जुड़ सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पर गुह्यतम बात बता रहे हैं ना, तो गुह्यतम बात का तो मुख्य अर्थ ही आता है कि मेरे दो हाथ वाला जो स्वरूप है वो मेरा मूल स्वरूप है, बाकी सब स्वरूप ऐसा नहीं कि वो अच्छा ये तो सब ठीक है और वरा देव वामन देव ठीक है उनका, ऐसा नहीं होता है, सब एक ही समान शक्ति है, लेकिन वो प्रथम मोमबत्ती है, बाकी सब उनमें से प्रकट हुई ना दूसरी मोमबत्ती। तो ये हमें समझना चाहिए, रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु। बहुत सारे रामादि मूर्ति बहुत सारे अवतार लेते हैं भगवान, नाना अवतार मकरोद बहुत सारे अवतार लेते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं सम्भवत परम को मानना। लेकिन कृष्ण जो वृंदावन के है जो दो हाथ वाले, वो कृष्ण मूल है सबके, गोविंदमादि पुरुषम तपा गया। इसलिए किसी का राम कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे कि अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम मेरे शरण में किसी और के पास भेज दूंगा, मैं स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा।
राइट प्रभु जी, राइट, थैंक यू।
और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या हम जो सुबह शाम जो नरसिंह आरती वगैरह करते हैं, जो कि प्रभुपाद ने स्वयं ने बोला हुआ है, तो इसे हमें नियमित करना ही चाहिए ना?
क्योंकि ये भी एक रहस्य है कि हमने एक बहुत शायद 4-5-7 साल हो गया या भी ज्यादा, मैं एक लेक्चर मैंने दिया था बहुत समय पहले कि जो भक्त कृष्ण के राधा कृष्ण की सेवा करते हैं उनको नरसिंह देव की उपासना या उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए। लॉन्ग बैक वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस। तो इसका समग्र समरी ऐसा है कि नरसिंह देव हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है वो सारे अनर्थ नष्ट करके हमें निष्ठा रुचि आसक्ति आदि जो स्टेजेस हैं वहां तक हमें पहुंचाते हैं भगवान नृसिंहदेव। और इस तरह से
हमारा जो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम जो होता है, कृष्ण भगवान के प्रति या फिर गौर नित्य के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम को प्रबल बनाते हैं भगवान नृसिंहदेव। इसलिए भगवान नृसिंहदेव को अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में प्रॉपर ये भी जानते थे कि जब हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे कृष्ण भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु का, तो स्वाभाविक रूप से माया कोई पसंद नहीं आएगा और एक रूप से माया को हम चुनौती दे रहे हैं, तो परिणाम आएगा कि इस्कॉन संस्था को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बहुत सारे अवरोध का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों को निरंतर दिन में कम से कम 2 या 3 बार नृसिंहदेव की स्तुति करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा कि ताकि भक्तों का, इस संस्था का और हमारे आंदोलन को किसी और से कहीं पर भी क्षति ना हो। इसलिए और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा गुरु जी।
हाँ बोलिए।
गुरु जी आप राम भी तो 2 हाथ वाले बताए गए।
हाँ तो ठीक है ना, आपसे क्या प्रॉब्लम है? राम भी 2 हाथ वाले, वामन भी 2 हाथ वाले। हाथ से क्या लेना देना?
प्रभु जी।
हाँ जी बोलिए।
प्रभु जी जैसे जो जो है 3 पार्ट हैं अभी इस चैप्टर इसमें और भगवत गीता भी, जैसे सबसे पहले था कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, तो उसमें हमें ब्रह्मभूत वहाँ पे वो उसका उसके बारे में हमें परिचय मिलता है, तो मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं अपना बता रही हूँ बस आपको। तो और फिर आता है मोर कॉन्फिडेंशियल जिसने सुपर सोल पर ब्रह्म के बारे में बताते हैं, और अब जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जिसमें भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में, और उन पे मतलब उन पे मन लगाने की बात है। तो जो जब हम मोर कॉन्फिडेंशियल और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल की बात करते हैं, तो क्या वो जो जैसे जो भक्ति मार्ग पे हैं उनके लिए नहीं है वो? उसको हम ऐसा समझें कि वो शायद ज्ञान मार्ग और अष्टांग मार्ग के भक्तों के लिए है, ऐसा मतलब उनका जो पहुंचने का जगह है वो है, ऐसा समझना मतलब कि कभी कभार ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है कि वो सब एक जैसे ही कभी कभार लगते हैं।
एक्चुअली इस विषय में शायद मैं कई बार एक पॉइंट बताया था कि ब्रह्मा भूत वाला श्लोक भी वैष्णव के लिए ही है।
हाँ।
ये जो आपका ईश्वर सर्व भूतानां श्लोक जो है वो भी वैष्णव के लिए अप्लाई होता है, और सर्वधारण पंडित जी श्लोक है वो भी वैष्णव के लिए अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि यद्यपि 3 कैटेगरी बताई है, लेकिन अगर कोई कृष्ण ब्रह्म का मूल है, अगर कोई कृष्ण को ब्रह्म कहता है कि कृष्ण आप तो साक्षात ब्रह्म हो, तो इसमें कौन सी गलत?
नहीं, गलत नहीं। हाँ।
ठीक है ना,
ठीक है।
अगर कृष्ण आप परमात्मा हो, अच्छा तो वो तो है ही।
यानी वैष्णव के लिए 3 कैटेगरी से, और जो बाकी जो जिस मार्ग पे जैसे चल रहे हैं उनके लिए वो एक एक कैटेगरी बन के वो सिंगल सिंगल आएगा ऊपर एक एक करके
अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स सरेंडर।
डिजायर्स, हाँ, सरेंडर।
अगर किसी के पास 100 रुपया है तो उसके पास
20 रुपए
भी, ऐसा ये 50 रुपया वाला अलग है, 20 रुपया वाला अलग, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं, ठीक है।
ठीक, और कोई प्रश्न है किसी को? Okay, so we stop and we'll come back again. Namakaro, आप अपडेट कर देना next session.
And we'll okay. Yeah.
Thank you.